તારીખ 9/5/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 3 અને 4 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 5 મૂળ કેસેટમાં હમિંગ છે.
અનંત વ્યક્તિ હૈ અનંત ગુણો કે અનંત વ્યક્તિ હૈ પર્યાય હૈ વો નષ્ટ
નહીં હોતી
इसलिए वे कंपोस्टियों की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। जैसे कांकड़ा से उसके न किया हो उसको नष्ट नहीं कर सकते, वैसे वो भी अपना प्रेम कहीं टिकाए रहते हैं। और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य, विरुद्ध कार्य क्या है, उत्पाद भी विरुद्ध कार्य है, उत्पाद भी करता है परिणाम, तो उत्पाद से यही विरुद्ध है, एक परिणाम का उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, एक परिणाम का नाश होने की प्रक्रिया है। तो समस्त विरुद्ध कार्य की तरफ चल रहा है और अविरुद्ध कार्य मैंने ध्रुव रूपी प्रेम बन रहा, ध्रुव रूपी वो टिकाए रहा है, अविरुद्ध है, उसमें कोई विरुद्धता नहीं, दोनों के हेतु का है, दोनों का कारण बड़ा है, उत्पाद के होने का भी कारण है और ध्रुव रहने का भी उसमें कारण है। ये सदा विश्व का उत्पाद में है और विश्व में अपना अस्तित्व और उत्पाद में जो सब रहना वो उसका विश्व का उत्पाद है। क्या विश्व का उद्गार है कि विश्व में अपना अस्तित्व अनादि अनंत टिकाए रखना, वो टिकाए रहते हैं, इसका भी क्या है, उत्पाद करते हैं मतलब टिकाए रहते हैं, समस्त द्रव्य विश्व को टिकाए रखता है। अगर एक द्रव्य नाश हो जाए तो क्रमशः अनंत द्रव्य नाश हो जाए तो विश्व का अस्तित्व रह सकता, विश्व ही नहीं टिकता। विश्व टिकता है मतलब विश्व का उसको टिकने में वो उपकार करता है, ये बात तो नहीं वस्तु बोलते। लेकिन न्याय के तौर से देखो तो अगर कोई एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ भी लाभ नुकसान करता हो तो या कर सकता हो तो करने की शक्यता पॉसिबिलिटी उतना भी होता तो कोई जीव वितराग हो सकता नहीं, क्योंकि अनंत द्रव्य में से कौन कभी मेरा नुकसान करेगा उसका भय तो छोड़ नहीं सकता, कर सकता है तो करेगा, तो उसके प्रति द्वेष, जो नुकसान करने वाले जितने भी हो सकते हैं उसके प्रति द्वेष करना है। और दूसरा पदार्थ अगर लाभ कर सकता हो तो लाभ करने वाले के प्रति जो राग होता है वो राग को भी मिटा सकते हैं। तो वस्तु व्यवस्था भी ऐसी है कि जिससे राग द्वेष समाप्त हो जाए और विचारता की प्राप्ति हो। वस्तु स्वरूपता यथार्थ ज्ञान वितरागता का उत्पादक है और राग द्वेष का नाश करने वाला है। ये वस्तु व्यवस्था और जीव की निर्दोषता, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान और जीव की निर्दोषता दोनों को सिद्ध करें। इसलिए ज्ञानी को तो सारा विश्व है वो सही ज्ञान का ही नहीं होता है। अब विचार थोड़ा आगे कि निमित्त नैमित्तिक को संबंध है, जैसे कि ये जैसा ज्ञान के सामने है दर्पण की तरह, ये निमित्त है और ज्ञान निमित्तिक है। ज्ञान दो रूप से प्रकाशित होता है, ज्ञाकार और ज्ञानाकार, सिद्धि उपाय दो रूप है इस बारे, ज्ञानाकार और ज्ञाकार। तो ज्ञाकार अनुसार ज्ञानाकार का होना, जैसा ज्ञान का आकार है वैसा ही ज्ञान का आकार होना, तो ज्ञान का धर्म है, ज्ञान का धर्म नहीं है। निमित्त नैमित्तिक के संबंध से जो धर्म है वो भी अपना पदार्थ का धर्म है। जैसे अरिष्ठा में प्रतिबिंब आएगा तो लकड़े में आएगा क्या, तो प्रतिबिंब बिंब का कारण से नहीं है, प्रतिबिंब भी बिंब का कारण से नहीं है, प्रतिबिंब भी अरिसा के कारण से नहीं है। क्यों? कि दूसरा अरिसा नहीं होता वहां, कांच नहीं होता, तो पत्थर में या लकड़े में या लोहे में कोई प्रतिनिधि दिखने वाला नहीं था। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी अपने धर्म को सूचित करता है, क्या अपने धर्म को सूचित करता है, वो भी अपना धर्म है, लेकिन उसमें पर के साथ संबंध बताया जाता है, इसलिए उसको पर सापेक्ष धर्म कहने में आता है। लेकिन पर सापेक्ष धर्म किसका? निज का धर्म है, पर का धर्म नहीं। पर सापेक्ष कहते हुए भी तो धर्म तो स्वयं का है, अपना है, पर का धर्म
नहीं।
जैसे आत्मा में पर पदार्थ के अपेक्षा अपेक्षा से नास्तित्व नाम का धर्म है, क्या और रूप से अस्तित्व नाम का धर्म भी है और शक्ति भी है, और नास्तित्व नाम का एक धर्म है तो वो पर से नास्ती है, लेकिन धर्म किसका है? पर का धर्म नहीं है, पर से नास्ती होते हुए भी धर्म को अपना है। इसलिए निमित्त निमित्त के संबंध में भी परस्पर दो पदार्थ की भिन्नता वैसी की वैसी भिन्न ही रहती है, उसमें कोई बाधा आती कथनचित अभिन्नपणा होता होगा ऐसा कभी बनता। जैसे दूसरे पदार्थ का संयोग का संस्कार में से जीव संस्कार भेजता है, संस्कार नहीं आता है ना, सुनता लिखती तो संस्कार, जैसे पेंसिल को अनुकाटने में और असंस्कार में से वो संस्कार नहीं भी भिन्नता है, जैसे कांटा स्वयं ही अंधार है, कांटे को अनुकाटने में मैंने मैंने क्या पॉइंट। तो दोनों प्रकार के धर्म अपने हैं, दोनों धर्म भी अपने हैं, दूसरे के तो कोई धर्म, और उस धर्म से दूसरा कुछ करता है ऐसी बात भी फलित नहीं होती है, सिद्ध नहीं होती है। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से, इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से आपस में भिन्न भिन्न और स्वरूप में एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को गंभीर कथा से भी संवाद की आपत्ति आती है। क्या होता है कि जब पदार्थ ही स्वरूप से भिन्न है और अपने रूप से अभिन्न है, पर उससे भिन्न और पर उससे अभिन्न, यही और आचार्य महाराज ने निश्चय भी ऐसा ही किया है कि मैं जीव नाम के पदार्थ को आत्मा को एकत्र विभक्त दर्शाऊंगा। इस शास्त्र में मैं कैसा बताऊंगा कि अपने स्वरूप से एकत्व रूप है और पर से विभक्त है, जुदा है, ऐसा दर्शाने का मेरा अभिप्राय है। तो मेरा अभिप्राय है वही आपको ध्यान में रखकर के सभी जगह अनुकथन करना है, कहीं भी मेरा अभिप्राय से विरुद्ध आप विचार करेंगे तो ये शास्त्र में तो अभिप्राय विरुद्ध विचार करने की कोशिश होगी। मेरा तो ये कहने का अभिप्राय है ही कहीं भी एक पदार्थ दूसरा पदार्थ का कुछ भी कार्य करता हो तो किसी भी परिस्थिति में शुद्ध आत्मा स्वरूप से तत्व और दूसरे से भी ऐसा अपने आत्मा को देखने से भिन्न देखने से राजा जी की उत्पत्ति नहीं, अपना तो छूट जाता है, अनादि से जो ममत्व अपनत्व एकत्व किया है वो ऐसा स्वरूप होने से जीव नामक समय को बंध की कथा से दूसरे पदार्थ की संबंध वाली जो बात है वो भी संवाद की आपत्ति ले आती है, तो उसका स्वरूप से अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, इसलिए वो आपत्तिजनक है। उसमें आपत्ति आएगी, दुख आएगा, दूसरा कुछ होने वाला वस्तुता से वस्तु रूप से संबंध नहीं होने पर भी संबंध की कल्पना करना यही जीव को दुख का आपत्ति का कारण है। मेरा शरीर से संबंध है, मेरा कुटुंब परिवार से संबंध है, या मेरा किसी से भी कुछ प्रकार का संबंध है, यही आपत्ति का कारण है। किसी भी भगवान को पुण्य का व्यवहार कितना नुकसान हुआ,
लाभ हुआ बड़ा।
सिद्ध भगवान को ऐसे मानते हुए सिद्ध हो गए, ऐसी मान्यता करके वो सिद्ध हो गए और उसका पुण्य का व्यवहार खत्म हो गया, तो क्या उसको आपत्ति हुई? कि पुण्य का व्यवहार खत्म होने से पाप का व्यवहार भी खत्म हो जाएगा, और पुण्य और पाप दोनों का व्यवहार खत्म होने से किसी भी प्रकार की आपत्ति आएगी निराकार विराजमान हो जाएंगे, भले ही खत्म हो। इसमें क्या है?
स्वतंत्रता निकालता
आत्मा को पुण्य का बंधन भी नहीं पाएंगे। क्या आत्मा को पुण्य का बंधन भी
नहीं चाहिए?
नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए,
किसी भी प्रकार का बंधन नहीं चाहिए। ये बंध कथा ही आपत्तिजनक है, बंधवादी कथा
आपत्तिजनक है,
प्रकरण ही सारा समाप्त कर दो ऐसा कहते हैं। करना मैंने प्रकरण के बंध का प्रकरण समाप्त करो, हमारे सार का ये उद्घाटन है कि बंध का प्रकरण
समाप्त करो।
तो फिर बंध जिसका लोग है ऐसा लोग कर्म सुदृढ़ कर्मों के प्रदोषों में ठीक होना जब कैसे होता है भाव से सुंदर कर्म प्रदेशों में स्थित हो जाता है, ले आता है तो उसमें अपना अस्तित्व ग्रहण कर लेता है, भाव से दृश्य नहीं हो सकता, दृश्य नहीं हो सकता। और जिसका मूल है उद्गम कर्मों में स्थित होना जिसका मूल है, ऐसा परसमय पड़ा उससे उत्पन्न होने वाला स्वसमय रूप जीवित पड़ा उसको जीव नाम के समय को समय को बांधते हो, इसलिए समय के एकत्व का होना ही निश्चित होता है। जब जो पदार्थ एक दूसरे दूसरे को स्पर्श नहीं करता है तो फिर उसमें जीवितपना कहाँ से ला सकते हैं? शरीर है वो छोड़ना नहीं चाहता है, क्या शरीर का संयोग कोई जीव छोड़ना नहीं चाहता? ऐसा भी नहीं है कि मेरा शरीर में कुरूप है, कुरूप नहीं है इसलिए मैं छोड़ देता हूं, कभी कोई सोचता है क्या?
नहीं
छोड़ना चाहता है फिर भी उसको रख सकता नहीं, रख सकता है क्या? जीवितपना उसको कहां से हो? नहीं रख सकता, दूसरे के साथ वो रह नहीं सकता, संयोग है वियोग के साथ ही अपने का होता है, तो एक वस्तु बना कोई साथ कभी नहीं होता। इसलिए समय के एकत्र होना आवश्यक होता है। इसलिए समय है तो प्रत्येक अपने स्वरूप ये सिद्ध होता है। गाथा का भाव तो निश्चय से सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव में ठीक रहते हुए ही शोभा पाते हैं। पदार्थ की शोभा क्या है कि वो अपने पदार्थ में रहे, दूसरे पदार्थ के साथ संबंध नहीं करे। नहीं कर सकता है फिर भी करने को जाता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है तो उसकी शोभा बिगड़ जाती है, अपत्याती है, दुखी हो जाता है, विकारी हो जाता है, अशोभनीय परिणाम को प्राप्त होता है। निश्चय से सरल पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थिर रहते हुए ही शोभा पाते हैं, परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादि काल से पुंगल कर्म के साथ निमित्त रूप बंध अवस्था है। क्या निमित्त रूप बंध अवस्था? बंध अवस्था निमित्त निमित्त के शोभ देते हैं, चिकना परिणाम करते हैं, परमाणु में भी चिकास होती है, एक क्षेत्राधार को स्थिति को प्राप्त है। तो एक क्षेत्राधार कुछ काल पर्यंत साथ में रहना उसको निमित नियमित संबंध रूप बंध कहने में कितने की बात है। उससे ऐसी बंध अवस्था से इस जीव में भी संवाद खराब होता है, उनकी शोभा बिगड़ती है। जैसे सिद्ध भगवान की शोभा है ऐसे मुक्त जीव की, ऐसे कर्म बंधन वाले संसारी जीव की शोभा अशोभनीय कार्य करें तो अशोभनीय किसका रूप हो जाता है? सिद्ध भगवान का जो रूप है वो शोभायमान है, और संसारी जीव का रूप देह के संयोग से अशोभनीय हो जाता है। शोभनी कहता नहीं इसलिए वास्तु में विचार किया जाए तो एकत्र ही सुंदर है, उससे यह भी प्रभा को प्राप्त होता। जीव का एक बार रहना ही उसके लिए सुंदर है और ये शोभा का कारण है। दूसरा का संबंध इसका शोभा का कारण लेकिन भरत चक्रवर्ती को अंगीकार करने के लिए वैराग्य कैसे हुआ? एक अंगूठी नीति हाथ में से बहुत संपत्ति वाले थे, उसको तो सभी अंगुली में नीति अंगुली रहती है, एक निकल के देखा कि उसका जो बुखार है तो दूसरे अंगूठी वाली जो अंगुली है उसके बराबर नहीं, अंगूठी से मेरी शोभा बड़ा चक्रवर्ती और मेरी शोभा एक अंगूठी से, ये क्या देखता है? दूसरे से मेरी शोभा संसार में तो यही बात चलती है, आप हमारे साथ संबंध रखो तो हमारी शोभा है, हमारे लड़का लड़की की शादी में आप पधारो तो हमारी शोभा बढ़ेगी, क्या कहते हैं? ये संसार का मामला है, संसार का मामला में दुख उत्पत्ति का ये प्रसंग है, सुख का प्रसंग नहीं है। ये सुख का प्रसंग है, जीव अकेला रहे ही शरीर का भी साथ संग नहीं हुए ही उनकी शोभा प्राप्त हो जाती है। तो अशरीर ही बनाने का शास्त्र है, क्या कहते शास्त्र ही जीव को अशरीर ही बनाने का है जो सिद्ध पद है। यहाँ यही ध्वनि कृष्ण से निकलता है कि तुम शरीर का संयोग को भी उसका महत्व को भी छोड़ करके अपने एकत्र स्वरूप में विराजमान हो जाओ, यही तुम्हारे लिए शोभा है। यही शोभा का सुंदरता का कारण है, शरीर का संयोग शोभा का कारण।
जगत के छह पदार्थ वितरणता के अंदर कारण पड़ते हैं।
स्वरूप ही ऐसा है, विष्णु का स्वरूप ही ऐसा है कि उससे सम्यक ज्ञान ही जुड़े। वो निमित्त है, सम्यक ज्ञान में वो निमित्त है और नैमित सम्यक ज्ञान है, ऐसा ही विष्णु का स्वरूप
है। और अज्ञानी उससे
सही रूप से देखे तो, गलत दृष्टिकोण से देखे तो सारा जगत राग द्वेष का उपाय है। ठीक है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, ये इष्ट है, ये अब उस एकत्व की असुलभता को बताते हैं। ऐसा जो आत्मा का एकत्वपना भाव से प्राप्त करना दृढ़ से है, फिर भी अनादि की परिस्थिति वश भाव से प्राप्त करना और भाव से फिर दृढ़ में इसकी स्थिति होना, इतना सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। अगर सुलभ होता और दुर्लभ नहीं होता तो अनंत काल संसार में जाता, इसलिए असुलभता को परिचय में भी आ रही है और अनुभव में भी अनादि से जीव संसारी है लोक में, तो उसको तो काम भोग संबंध की जो भी कथा है, तो बंधन करने वाली कथा है, वो तो उसको बहुत सुनी हुई है, बहुत परिचित भी, इसका उसमें परिचय में संयोग भी बहुत हुआ है और अनुभव भी है, इसलिए वो सुलभ मैंने सहज हो गई है। क्या है किसी जीव को पूछो आपको समय समय पर नया नया विभाव विचार करने में कैसा पुरुषार्थ करना पड़ता है? यानी तो सहज हो जाएगा, घात करने के लिए कोई जोर करना पड़ता है ऐसा नहीं है, विवाह करने के लिए कोई जोर करना पड़ता नहीं है। बच्चा है घर में, बच्ची है, लड़की है, लड़का लड़की बड़ा होता है तो उसको अपना जो अनेक प्रकार के जो शौक हैं, कपड़े का, बाल अच्छा रखने का, वो करने का, खाने का, पीने का, क्या सिखाया जाता है? गुस्सा करने को सिखाना पड़ता है, देख तुझे गुस्सा ऐसे करना, ऐसा हो तो ऐसा गुस्सा करना, ऐसा करने को सिखाना पड़ता है, क्रोध करना सिखाना, मान करना सिखाना नहीं पड़ता, उसका अपमान करो तो उसको बुरा लग जाता है, बच्चे का भी अपमान करो तो, लड़के का भी अपमान करो तो, हमें अभी बड़ा हो चुका हूँ पिताजी, मेरे साथ थोड़ी समुचित व्यवहार करना चाहिए आपको। कहते मैं छोटा था ऐसा व्यवहार आप कर लो, अच्छा मान आ जाता है, किसी का नहीं पड़ता, उसको मैं भेजना नहीं पड़ता, और उसको दुकान पर दिखाओ तो पिता से भी होशियार हो जाता है कमाने में, तो छोटे पिंड भी सीख जाता है ना, क्या उसके लिए तो सिखाना पड़ता है, दोष कैसे करना तो सिखाना पड़ता। क्यों अनादि से उनकी एक परिस्थिति सुन तो परिचित, तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिस है, उसका क्या है आगे बहुत प्रैक्टिस वो कर चुका है उनके, और अभी मैं उसको आसानी से हुआ हो जाती है, कोई जैसे पुरस्कार से नहीं करना पड़ता ऐसा लगता है। है तो सही उसमें पुरस्कार पूछा पुरस्कार है तो सही, लेकिन सहज सहज उसका परिणाम हो जाता है, इसलिए वो सुलभ है ऐसा आया। किंतु भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी भी कभी न तो सुना है न परिचय में आया है और न अनुभव में भी आया है। भिन्न आत्मा का एकत्व होना सुना भी नहीं है, क्या कहते हैं कि सुने सुना भी नहीं है, सुना कब कहा जाता है, केवल सुनी हुई चीज अंतर में उतरती है, तो एक कान से सुने दूसरे कान से निकल जाए उसको सुना अनसुना कहने में आता है। न तो कभी सुना है न उसका परिचय किया है, पहचान के क्या कोशिश किया है एकत्व आत्मा का, और पहचान करके अनुभव करने के लिए कभी किया है, अनुभव भी किया नहीं, अनुभव में भी आत्मा नहीं आया है एकत्व आत्मा, इसलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है, इसीलिए वो एक पना सुलभ नहीं आता। कोई भी नया काम में थोड़ा परिश्रम ज्यादा पड़ता है, या तो जीव को जो भी आदत पड़ गई हो इस आदत से उल्टी बात करना हो तो उसको कठिन लगता है। पहले जो एक अंक सीखने में मुसीबत थी, कितनी मुसीबत थी कि उसको हाथ पकड़ करके फिर तो उतना बगड़ा सीखा, फिर तो उतना सीखा कि वो खुद ही कॉलेज का प्रोफेसर हो जाता है, सिखाने वाला हो जाता है, लेकिन पीछे को भी हाथ नहीं पकड़ना पड़ता है, एकड़ा के वक्त भी हाथ पकड़ना पड़ता है बच्चे का, ऐसा करो तुम ऐसा करो, और बहुत हजार जैसे सारी जो स्लेट है उतना एकड़ा हो जाए वहां तक उसको पता है, इतनी कठिन बात है क्या, इतनी कठिन नहीं होने पर भी कभी नहीं किया है इसलिए कठिन ऐसी बात है। चक्कर यहाँ करता है स्वाध्याय करते हैं बहुत साल, अब कहते हैं कि प्रयोग करो तो पूछेंगे कि कैसे करो, ऐसे करो, अच्छा समझ लिया क्या किया, समझ लिया प्रयोग की बात भी समझ लिया, दूसरी बात समझ ली थी प्रयोग की नहीं समझी थी, एक प्रयोग की ज्यादा समझ ली, समझना 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 रह गया उसको, फिर कार्यान्वित करने के बाद तो ये जो आदत पड़ गई है वो आदत में से छूटना आसान नहीं है, इतना ही कहने का आदमी है अशक्य नहीं है, कोई बात सत्य
नहीं है,
इसको इसमें नहीं समझा मैंने, इसको नहीं समझा तो समझ के अधिकार नहीं किया, उसने समझ करके अंगीकार नहीं किया, जिसने नहीं समझा उससे उसने ज्यादा दर्श कर दिया,
आगे नहीं बढ़ेगा पीछे जाएगा, समझ करके आगे नहीं बढ़ेगा तो पीछे जाएगा, अध्यात्मता तो सिद्धांत है, क्या अध्यात्मता तो सिद्धांत है, तो अध्यात्म शास्त्र का अध्यात्म विषय का अध्ययन करे, श्रवण करे, कथन करे, संकल्प करे और तब अनुकूल कोई प्रयास नहीं करे, क्या आत्मा का आश्रय करना उसी का नाम अध्यात्म, स्वरूप का आश्रय करना उसी का नाम अध्यात्म। तो स्वरूप आश्रय करने की बातें हैं, उसको सुने पढ़े और प्रयास नहीं करें तो ये शुष्क अध्यात्म हुए बिना रहने वाला विषय तो सारे जगत का छोड़ करके अध्यात्म सामने आया, सुनी लोग सुनाने वाला भी मिला और कहने वाला अध्यात्म शास्त्र भी मिला, ये पुण्य योग। लेकिन जीव स्वरूप आश्रय का अगर प्रयत्न नहीं करता है तो उसको वही अध्यात्म के विशिष्टता को धारण किए बिना रहने वाली नहीं, ये लक्षण हो जाए। तो पहले से ये लक्ष्य होना चाहिए, इस विषय को स्पर्श करने पहले ही लक्ष्य तो पहले से हो जाना चाहिए कि मुझे प्रयास चालू करना है, तभी उसे तो आपने लेना है। अगर मैं प्रयास नहीं करूं और इस विषय को स्पर्श करूंगा तो मुझे नुकसान होने वाला है, बजाय लाभ होने के लिए नुकसान हो जाएगा, ये लक्ष्य। ये अध्यात्म का सिद्धांत है, प्राइमरी प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, पहला ये सिद्धांत है कि तुमको इस विषय में आना है। जैसे हमारे यहाँ जो ऊपर की डिग्रियां होती है शिक्षा के लगा तो उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के, एंट्रेंस मैंने एंटर होने के लिए वो लायक है, काबिल है कि नहीं है उसको देखना पड़ता है, फिर उसको ये डिग्री कोर्स में इसके क्लास में बैठने का परमिशन मिलता है। यहाँ भी ये बात है कि तुम्हें प्रयास करने के लिए तुम्हारी तैयारी है, प्रयोग और प्रयत्न करने के लिए तुम्हारी तैयारी है, तो हमारे साथ वरना हमारे साथ तुम्हारा तो नुकसान होगा, तुम्हारे संग करने वाले को दूसरों को भी नुकसान हो जाएगा। हित होगा तो सुपर हितकारक प्रवृत्ति होगी, हित नहीं होगा तो सुपर अहितकारक प्रवृत्ति। इस समस्त जीव लोक को काम भोग सदमी तथा एकत्व से विमुख होने को अत्यंत विसंवाद कराने वाली है, यानी कि आत्मा का अत्यंत अनिष्ट कराने वाली है। क्या है काम भोग संबंधी जितनी भी कथा है बातें हैं वो आत्मा को नुकसान कराने वाली है, दुख उत्पन्न कराने वाली है, अकुलता उत्पन्न कराने वाली है। तथापि एकत्व से विरुद्ध होने से क्यों, इसका लॉजिक ले लिया कि आत्मा स्वरूप से अनंत गुण का एकत्व धारण करने वाला पदार्थ है, सभी पदार्थों से भिन्न रहने वाला पदार्थ है, फिर भी वो दूसरा पदार्थ के साथ संबंध करने को जाता है, उसका मनेच्छा मुझे वो चाहिए ऐसा चाहिए क्या चाहिए, तो ये जीव को आकृता या दूसरा उत्पन्न कराएंगे नियम से उसको क्योंकि स्वरूप को उत्पन्न करने वाला है द्रव से कोई द्रव मिलता नहीं मिल सकता नहीं, इसलिए वो दुख उत्पन्न कराने वाली बात है। पहले अनंत बार सुनने में आई है, बहुत सुनता है, अपने पास ऐसा कोई पदार्थ संयोग नहीं हुए ऐसे भी कथा वो सुनता है और देखता भी है, परिचय भी करता है कि इसके पास है मेरे पास नहीं है, ये विदेश की कथा सुनता है मेरे पास ऐसा है रूप में ऐसा है, ऐसा मकान होते हैं ऐसे मोटर गाड़ी होती है ऐसा खाने पीने का और काम लेने का ऐसा यंत्र होते हैं वो होते हैं ये ऐसा होता है, बहुत ऑटोमाइजेशन में प्रोग्रेस किया है, तो ये सब कथा बहुत सुनने में आती रुचि से सुनने में मतलब क्या है, पहले अनंत बार सुनने में आई है, किस तरह सुनी है जिनने रुचि से सुनी है ऐसा होता है, अभी तो ये लोग बहुत सुखी है, अच्छा हाँ बहुत पैसे वाले लोग होते हैं सारा देश बना के बोला जाता है क्या बात है ना, ऐसा कमाई का ऐसा स्टैटिस्टिक्स तो बताए कि नहीं हर तरह का कि 10 आदमी में से 500 करोड़पति होते हैं 200 करोड़पति होते हैं, तो ये सब जो है वो रुचि से भी सुनता है, किस तरह सुनता है
रुचि
से सुनता है, ये बहुत अच्छी है, और रुचि का मतलब ये है कि मुझे भी ऐसा होवे तो मुझे भी बात का बहुत सुख मिले ऐसे उनको रुचि मिले, आचार्य महाराज कहेंगे कि तू ये आत्माकार एकत्व की बात भी रुचि से और भाव से सुनना, क्या रुचि से और भाव से सुनना, भाव से सुनना मतलब कैसे भाव से सुनना, तो जैसे कोई कामधेनु बुद्धि की कथा भाव से सुनता हो ठीक वैसे ही भाव से तो की कथा सुन, हाँ तुझे भाव आता है कि नहीं आता है, कैसा भाव आता है, रस आता है कि नहीं भाव में रस आता है कि नहीं आता है, तो ये रस विभाव है जीव को मिलता है, या तो आत्मा के शांति को हम आनंद को हम अमृत कहे तो ये अशांति का अध्याय को उत्पन्न करने वाला है, ऐसी बात है, पहले अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में भी
आई है,
बहुत परिचय किया है और अनंत बार अनुभव में भी आई है, पंच परावर्तन में कोई क्षेत्र कोई द्रव्य कोई भाव कोई ऐसे दूसरे पदार्थ कोई ऐसे भाव संचार रखे हो गए, तो अनंत बार इस जीव को हो चुका है, जैसे देव रूप में ऊपर के वैमानिक अनुत्तर विमान जो है उसमें नवमी ग्रेड का जो विमान है वहां तक वो दिशा देखे जा सकता है, प्रवासी व्यादि में नहीं जा सकता, वहां देव के भव में भी अनंत बार उत्पन्न हो रहा है, और सभी परिणाम मैंने उसके कारण तो परिणाम किए हैं उसका फल भी उत्पन्न हो रहा है अनंत बार, ये पुण्य का फल है उत्कृष्ट पुण्य का फल है मिथ्या दृष्टि का ये उत्कृष्ट पुण्य है, अभी तो ऐसा कोई पुण्य हजार का हिस्सा भी हजार में भाग में भी शस्त्रांश भी नहीं कर सकता, कितना फिर कसाई का अभी परिस्थिति है वो भी थोड़ा पुण्य करता है थोड़ा मन कसाई करता है तो फायदा मैंने कौन धर्म कर लिया धर्म कर लिया ऐसा मान लेता है तो उसको पता ही नहीं है, कीमत कितनी है, कीमत कुछ नहीं है, मान लेता है ज्यादा। अनंत बार सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, इसका मतलब यह है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। वह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, कहता है कि यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में संसार समुद्र के मध्य में है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परावर्तन का बात किया है। निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण ब्रह्म को प्राप्त हुआ है। कुछ बाकी नहीं रहा, लंबी छोटी बात है। द्रव्य परावर्तन कैसे होते, क्षेत्र परावर्तन, भाव परावर्तन, बहुत लंबा काल इसमें और समस्त विश्व को एक छत्र राज से वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसके पास बैल की भांति भार वहन कराता है। क्या कहते हैं कि संसारी जीव को मोहदान का भूत है, उसने वशीभूत कर लिया है। क्या करता है,
कर लिया,
किसी को रखता नहीं। एक आत्मा में दूसरा आत्मा का प्रवेश कभी होता
नहीं,
जगह ही नहीं है वहां, लेकिन वश हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। तो जैसा वो कहता है वैसा वो कर दे, वो तो तुम्हारा माथा खोल, अपना माथा खोल देगा। ऐसा तो ये संसार का जो मोह नाम का भूत है संसार में, तो जीव को बैल की तरह काम कराता है। जैसे खांची है या खेडूत है, काले दिन कोई गाड़ा में जोड़ता है, कोई पानी में जोड़ता है, कोई खेती में जोड़ता है, बहुत परिश्रम कराता है। इतना थकता है, थक जा रहा है, तो भी मार मार के जैसे बैल के पास काम कराया जाता है, जैसे इस जीव दुखी होता है तो भी उसके पास काम कराया, किससे काम कराया जाता है, मोह के वश। कैसा है वो, कि सारे जगत को एक क्षेत्र राज्य करता है, सारे जगत पर एक क्षेत्र राज्य करता है। चक्रवर्ती का ऐसा राज्य नहीं होता, इंद्र का भी ऐसा राज नहीं होता, क्योंकि इंद्र का राज देवलोक तक सीमित है, चक्रवर्ती का राज मनुष्य में छह खंड तक सीमित है, पुराने अकाउंट लोग नहीं, देवलोक में भी पूरा सभी देव नहीं, सारा देवलोक नहीं, तो उसमें भी मर्यादा है, बोल से तो मर्यादा ही नहीं। तीनों काल के सभी जीव को वशीभूत कर दिया, सभी को मोहान्वित करता है और सभी के पास मजदूरी करवाता है। राजा है तो भी गुरुवश है, रंग झुंपड़ी में रहता है तो भी वो अपनी गुदड़ी को अच्छी तरह संभालता है, वो महल को अच्छी तरह संभालता है, वो झोंपड़ी को अच्छी तरह, उसको इसका मोह है, उसको इसका मोह
है।
हाँ, जो दारू पिया है ऐसा तो ऐसा भी है, पागल हो गया है। समस्त विश्व को एक छत्र राज से वश करने वाला महामोरूपी भूत, जिसके पास, जिस जीवों के पास बैल की मांगे भार बहन कराता है, वो करो वो करो, लाख मिला, करोड़ मिला, अरब मिला, फिर भी अपनी मजदूरी को चालू रखता है। और राजा, और राजा कितना मूल्य में શાંતિ થાય, ભાર વહન કરાતા હૈ, જોર છે, प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दास अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है। क्या हुआ है जगत के जीव को? बहुत तृष्णा है। क्या तृष्णा रूपी रोग बढ़ गया है? उसका जलन कहा मैंने, उसकी जलन जीव को बहुत है और उसको अंतरंग में वो पीड़ा दुख उत्पन्न कराती है। कृष्णा का संबंध कैसे करना कृष्णा का प्रारंभ कैसे करना, अपनी भाषा में समन करना अपने प्रारंभ करना कैसे करना। किसी को क्रोध की प्रकट होती है, किसी को लोभ की होती है, किसी को मान की होती है, किसी को माया की होती है। लोभ की होती है तो कृष्णा बात है, किसे कैसे करा करना ऐसा करते बहुत अच्छा कि पहले तो ये विचार करना कि ये बहुत निंदा है इसमें, यदि तेरी तृष्णा है उतना मिल जाने से तुझे मुझे मेरे पास उतना है, इतना इतना संपत्ति मेरे पास है, ऐसा एक भाव के सिवा तुझे क्या मिलने वाला है? लौकिक मोटाई जिसको कहते हैं, क्या लौकिक मोटाई? लोक में मोटाई मिलती है पास है। तो ये लौकिक होता है क्या चीज है, आखिर में वो क्या चीज है? तो वो एक धुआं है। क्या है?
धुआं
है जिसको पकड़ने जाता है बांस का भरे कितना हाथ में आवे, धुआं को ऐसे पकड़े तो क्या हाथ में आवे? तुम्हारा हाथ में आने वाला ऐसे होता है, एक धुआ है और कुछ नहीं है। उसको पकड़ने के लिए तेरे तृष्णा जो है तो पड़ रही है, शांत नहीं होती है। तो तुम ये ख्याल छोड़ो, क्या ये ख्याल छोड़ दो बोले तुम्हें मेरी कोई ऐसी गिनती हो रही, कुछ कुछ कल्पना करता है ना, मेरी ऐसी गिनती हो रही, लोग भी मेरे ऐसी गिनती हुए अगर ये बात छोड़ दो ना तेरी सूचना का प्रारंभ हो जाएगा, क्या कृष्णा तेरी खत्म हो जाएगी, कृष्णा नहीं रहेगी। मैं इसको प्राप्त करूँ कौन बताए, बात मेरी जो प्राप्ति नहीं होगी तो बताए नहीं होगी, तो तुम यहाँ से काट करो कृष्णा को छोड़ने के लिए यहाँ से काट दो। अपनी भाषा में तो बहुत सुंदर बात है, कृष्णा को खराब हो बहुत आसानी लाने जगत में और समाज में मेरी जाति में मेरे परिवार में मेरे संबंधी में यही घोषणा होते हैं। दुनिया पर ज्यादा जानते पहचानते नहीं है लोगों को, इतना लोग पहचानते हैं कि जो सगे संबंधी है मित्र परिवार है गाँव वाले हैं तो कुछ नहीं जानते हैं, उसको कुछ जानते हैं कुछ उतनी तुलना उसकी फेल हो जाती है कि न जाने कितना भाव तक के वो कर्म बंधन कर लेगा। एक थोड़ा गिनती का सुख, क्या काल्पनिक सुख, धुआं जैसा गिनती में आने का सुख काल्पनिक अनुभव का अनुभव उत्पन्न कराने के कारण कितना बड़ा और निवेश हो गया
अनुभव का।
उसको ये निर्णय कर देना चाहिए कि भले ही लोग कोई मुझे नहीं जाने, कोई मुझे नहीं पहचाने, मेरा संबंध तो मेरी आत्मा मुझे मेरे आत्मा की शांति चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, फिर जो होना है वो जाने नहीं जाने मुझे किसी से लेना देना नहीं है।
भगवान।